ड्राइंग रूम में कुछ देर तक वही भारी खामोशी बनी रही। अदिति अपनी ही सोचों में खोई हुई थी और उसकी माँ उसे ध्यान से देख रही थी, जैसे अब वो सिर्फ गुस्से में नहीं बल्कि कोई चाल चलने के बारे में सोच रही हूँ। फिर उन्होंने धीरे से कुर्सी पर बैठते हुए कहा,
अच्छा जो हुआ सो हुआ।
अदिति ने नज़र उठाकर उनकी तरफ देखा। माँ ने अपनी आवाज़ थोड़ी धीमी की, लेकिन शब्दों में एक अलग ही ठंडापन था। लेकिन सुनो अदिति, अब जो आगे होगा वो समझदारी से करना पड़ेगा। अदिति हल्का सा चौंकी। मतलब? माँ थोड़ा आगे झुकी। मतलब ये कि जब वो लोग तुम्हें वापस लेने आए, अदिति की आंखों में हल्की सी उम्मीद चमकी। आएंगे? माँ ने तुरंत कहा, जरूर आएंगे और जल्दी ही आएंगे। फिर उनकी आंखों में चालाकी की चमक आई। लेकिन तुम मत जाना। अदिति जैसे एकदम सन रह गई। क्या? हाँ, माँ ने पूरी ठंडक से कहा, तुम भी उन्हें दिखाओ कि तुम्हें उनकी कोई जरूरत नहीं है। कमरे का माहौल फिर से बदल गया। और सिर्फ तुम नहीं, उन्होंने आगे कहा, आर्यन को भी समझा देना कि वही रवैया रखे। अब अदिति पूरी तरह हैरान थी। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? माँ ने लंबी सांस ली। बेटा, ये दुनिया ऐसे ही चलती है। उनकी आवाज में अनुभव था, लेकिन साथ ही सख्ती भी। आज उन्होंने तुम्हें निकाला है, कल तुम खुद लौट गई तो उनकी नजर में तुम्हारी कोई कीमत नहीं रहेगी। लेकिन अगर, उन्होंने शब्दों पर जोर दिया, अगर तुमने उन्हें इग्नोर किया, दूरी बनाई, तो वो खुद झुकेंगे। अदिति ने सिर हिलाया। नहीं माँ, प्लीज। उसकी आवाज अब थोड़ी मजबूत हो गई। ये सब बेकार की बातें हैं। माँ चुप हुई, लेकिन उनके चेहरे पर असहमति साफ थी। अदिति ने गहरी सांस ली। मुझे इन सब चीजों से कोई फायदा नहीं चाहिए। उसकी आंखें अब कहीं दूर देख रही थीं। मुझे सिर्फ एक चीज की चिंता है। वहां हवेली में? माँ ने भौहें से कोड़ ली। क्या मतलब? अदिति की आवाज धीमी हो गई। पापा अकेले हैं। और वो अक्षरा? उसका चेहरा सख्त हो गया। वो औरत बहुत चालाक है माँ, पता नहीं वो क्या करते उनके साथ। माँ ने तुरंत जवाब दिया, अरे अक्षरा की तो याददाश्त चली गई है ना, वो क्या कर लेगी? उन्होंने थोड़ी लापरवाही से कहा, सब कुछ भूल चुकी होगी वो, पिछले दिनों का भी। अदिति ने धीरे से सिर हिलाया, पता नहीं। उसकी आंखों में बेचैनी साफ थी। माँ, मैं उसे जानती हूं, वो इतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। कमरे में कुछ पल के लिए तनाव फैल गया। माँ ने इस बार थोड़ा सख्त होकर कहा, और अगर है भी चालाक तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अदिति चुप हो गई। वैसे भी माँ की आवाज में अब कड़वाहट थी। उस इंसान ने तुम्हारे साथ क्या किया है, ये तुम भूल गई क्या? तुम्हारी जिंदगी खराब करने में उसका कितना हाथ है? अदिति ने नजरें झुका ली। तो अब? माँ ने साफ शब्दों में कहा, उसके साथ कुछ भी हो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है चिंता करने की। कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। अदिति के चेहरे पर उलझन थी। दिल कुछ और कह रहा था और दिमाग कुछ और। तभी दरवाजा धीरे से खुला। दोनों की नजर उधर गई। आर्यन अंदर आया, चेहरा थोड़ा थका हुआ, आंखों में बेचैनी और कदमों में वो आत्मविश्वास नहीं था जो हवेली में दिखता था। माँ ने एक नजर उसे देखा, फिर बिना कुछ कहे उठ गई, तुम लोग बात करो। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। अब कमरे में सिर्फ अदिति और आर्यन थे। कुछ सेकंड तक दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर अदिति धीरे से उठी। आर्यन? आर्यन ने हल्की सी मुस्कान देने की कोशिश की, लेकिन वो मुस्कान अधूरी रह गई। सब बहुत जल्दी हो गया ना, उसने धीमी आवाज में कहा। अदिति उसके पास आई, तुम ठीक हो? आर्यन ने हल्का सा सिर हिलाया, पता नहीं। वो सोफे पर बैठ गया, दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया। पूरी जिंदगी वहीं बिताई है मैंने,
उसकी आवाज भारी हो गई और आज एक फैसले में सब खत्म। अदिति कुछ पलों से देखती रही, फिर धीरे से उसके पास बैठ गई। खत्म नहीं हुआ, उसने शांत स्वर में कहा, बस थोड़ा बदल गया है। आर्यन ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में सच में यकीन था। तुम साथ हो ना, अदिति ने बहुत धीरे से कहा। आर्यन कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर उसने उसका हाथ पकड़ लिया। हम दोनों हैं, उसने कहा, बस यही काफी है। कमरे का माहौल थोड़ा नरम पड़ गया, लेकिन अंदर का तूफान अभी भी बाकी था। अदिति ने हल्के से कहा, तुम चेंज कर लो। आर्यन ने उसकी तरफ देखा, मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकालती हूं। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा सामान्य थी, जैसे वो हालात को संभालने की कोशिश कर रही हो। आर्यन ने धीरे से सिर हिलाया। अदिति उठकर कमरे में गई और अलमारी की तरफ बढ़ गई, और पीछे आर्यन उसे देखता रहा। उसकी आंखों में अब भी सवाल थे, उलझन थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी शांति भी, जैसे उसने सब कुछ खोकर भी कुछ बहुत कीमती पा लिया हो। जहां बाहर सब बिखर रहा था और अंदर दो दिल धीरे धीरे एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहे थे। राठौर हवेली, विश्वनाथ का कमरा, दरवाजा बंद होते ही जैसे बाहर का सारा शोर उसी पल खत्म हो गया। कमरे में हल्की रोशनी थी और विश्वनाथ खिड़की के पास खड़ा था। उसकी नजरें बाहर थीं, लेकिन देख वो कहीं और रहा था। आर्यन के जाते वक्त के शब्द बार बार उसके दिमाग में गूंज रहे थे। वो मेरी पत्नी है, मेरी जिम्मेदारी है। विश्वनाथ ने धीरे से आंखें बंद कर ली। दिल के अंदर एक अजीब सा खालीपन था। बेटा चला गया था और ये कमी वो साफ महसूस कर रहा था, लेकिन उसी खालीपन के बीच एक हल्की सी संतुष्टि भी थी। उसके होठों पर बहुत हल्की, मुश्किल से दिखने वाली मुस्कान आई, जो मैं नहीं कर पाया, उसने मन ही मन सोचा। वो मेरे बेटे ने कर दिखाया। उसकी उंगलियां खिड़की के फ्रेम पर कस गईं। अतीत की कुछ धुंधली यादें जैसे अचानक सामने आ खड़ी हुई, जब उसे अपनी पत्नी के लिए खड़ा होना चाहिए था, जब उसे साथ देना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं दिया। उसने उसूल चुने, रिश्ते नहीं। एक गहरी सांस उसके सीने से निकली, शायद, उसने धीमे से खुद से कहा, मैं गलत था। कुछ पल के लिए उसकी आंखों में नमी उतर आई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को फिर से संभाल लिया। चेहरा फिर वही सख्त, आंखें फिर वही ठंडी, लेकिन अंदर कहीं एक बाप आज अपने बेटे पर गर्व महसूस कर रहा था।